एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज की इस गहराई से चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खंगाल रहे हैं जो पहली नजर में शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन यकीन मानिए हमारी आज की डिजिटल दुनिया को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मध्ययुगीन साहित्य की।
हाँ।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं प्रोफेसर एलन ट्रहांड के विचार, जो उनकी दो खास किताबों से लिए गए हैं, मेडिवल लिटरेचर कॉन्टिन्यूटी डाइवर्सिटी एंड इन्फ्लुएंस और मेडिवल लिटरेचर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा।
ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि उस जमाने में कहानियां और जानकारी कैसे सफर करती थी, जब ना प्रिंटिंग प्रेस थी ना इंटरनेट।
सही कहा। आज हम अक्सर किताब या लेखक जैसे शब्दों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ट्रहांड के काम से पता चलता है कि मध्य युग में इन शब्दों के मायने ही अलग थे।
हाँ।
उनका मुख्य सवाल है, उस दौर में साहित्य का असली मकसद क्या था, उसकी भूमिका क्या थी समाज में।
और ये सवाल आज इसलिए भी अहम है क्योंकि हम खुद एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, प्रिंट से डिजिटल की तरफ।
बिल्कुल।
तो चलिए प्रोफेसर ट्रहांड के इन स्रोतों के जरिए मध्ययुगीन साहित्य की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि उस दौर की कहानियों का असली रोल और गोल क्या था।
हाँ, और ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के मीडिया को समझने का एक नया नजरिया भी देगा।
निश्चित रूप से।
इससे पहले कि हम विचारों में गोता लगाएं, प्रोफेसर एलन ट्रहांड के बारे में जानना जरूरी है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानविकी की प्रोफेसर हैं और मध्ययुगीन साहित्य, खासकर पुरानी और मध्य अंग्रेजी की जानी मानी विद्वान हैं।
हाँ।
लेकिन उनकी खास बात सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना नहीं है।
हाँ, उनकी सबसे अनोखी बात है उनका पांडुलिपियों यानी हाथ से लिखी पुरानी किताबों के प्रति गहरा लगाव। वो सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ती, मतलब पूरी किताब को एक वस्तु की तरह देखती हैं।
अच्छा।
कैसे?
जैसे वो किस चीज पर लिखी है, चमड़े या कागज पर, स्याही कैसी है, लिखावट किसकी है, जिल्द कैसी बंधी है, एक तरह से वो साहित्य की पुरातत्वविद हैं।
अरे वाह, आर्कियोलॉजिस्ट।
ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि उस जमाने में इन किताबों को बनाया कैसे जाता था, इस्तेमाल कैसे होता था
और लोग उन्हें समझते कैसे थे।
हाँ, ये सिर्फ कहानियों का अध्ययन नहीं बल्कि उस पूरी तकनीक और संस्कृति का अध्ययन है जिसने उन कहानियों को हम तक पहुंचाया।
कमाल है।
बिल्कुल। वो पारंपरिक भाषा ज्ञान को आधुनिक डिजिटल तरीकों से जोड़ती हैं।
अच्छा।
इससे वो मध्ययुगीन साहित्य को किसी म्यूजियम में रखी बेजान चीज की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा बदलती हुई परंपरा के रूप में देख पाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि किसी टेक्स्ट को समझने के लिए उसके भौतिक रूप, उसके मटेरियल फॉर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माध्यम भी संदेश का हिस्सा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। तो प्रोफेसर ट्रहांड का इन स्रोतों में मुख्य तर्क क्या है, वो क्या बताना चाहती हैं?
हाँ, उनका मूल विचार यह है कि जिसे हम मध्ययुगीन साहित्य कहते हैं वो सिर्फ कुछ पुरानी धूल खाती कहानियां नहीं है। ये जटिल रचनाएं हैं जिनका हमारी आज की संस्कृति, भाषा और यहां तक कि सोचने के तरीकों पर भी गहरा असर है। वो इस धारणा को तोड़ती हैं कि ये साहित्य पिछड़ा हुआ या आधुनिक पाठक के लिए अप्रासंगिक है।
मतलब वो ये कह रही हैं कि इन पुरानी कहानियों में भी वो गहराई, कलात्मकता और मानवीय चिंताएं मौजूद हैं जो आज भी हमें छूती हैं।
हाँ, और उससे भी बढ़कर वो दिखाती हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ कला के नमूने नहीं थे, इनका एक स्पष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक मकसद था।
अच्छा, मकसद?
हाँ, ये समाज को बनाने, समझाने और दिशा देने के औजार थे। वो हमें चुनौती देती हैं कि हम साहित्य, लेखक और पाठ जैसी अपनी आधुनिक परिभाषाओं से बाहर निकल कर देखें।
उनका एक और बड़ा मुद्दा है वो जो हमारी प्रिंट आधारित सोच है।
हाँ, से कितनी अलग होती है तब तक हम मध्ययुगीन साहित्य को ठीक से समझ ही नहीं सकते।
हमें उस युग की मीडिया टेक्नोलॉजी को समझना होगा।
हाँ बिल्कुल। संक्षेप में ट्रहांड का मिशन है हमें मध्ययुगीन साहित्य की विविधता, उसकी भौतिकता और उसके सामाजिक कार्य को समझाना। वो चाहती है कि हम इन रचनाओं को सिर्फ शब्दों के संग्रह के तौर पर ना देखें बल्कि उन गतिशील सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में देखें जो वे थीं, जिनका एक खास रोल और गोल था।
चलिए अब कुछ खास पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं जैसा ट्रहांड अपने स्रोतों में करती हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी पहलू है पांडुलिपि संस्कृति का महत्व, जिसे वो मटीरियलिटी कहती हैं। आज तो हम बटन दबाते हैं और प्रिंट निकल आता है, लेकिन तब
तब तो बहुत अलग था। कल्पना कीजिए, हर किताब हाथ से लिखी जाती थी।
हाथ से?
हाँ, वो भी कागज पर नहीं, अक्सर जानवरों की खाल से बने चर्म पत्र या वेलम पर। ये खाले तैयार करना ही अपने आप में एक लंबा
और महंगा भी तो होता।
हाँ, बहुत महंगा काम था। फिर उस पर लिखने के लिए लाइनें खींचना, खास तरह की स्याही तैयार करना,
और फिर आता था लिपिक्स का काम, स्क्राइब का।
हाँ, जो शायद हफ्तों या महीनों लगाकर पूरी किताब की नकल करता था। और सिर्फ नकल नहीं, कई बार उनमें खूबसूरत रंगीन चित्र,
अच्छा,
और सोने चांदी के वर्क से सजावट, इल्यूमिनेशन भी की जाती थी।
ये तो कलाकृति बनाने जैसा हो गया।
वाकई,
बिल्कुल।
और ट्रेहान जोर देती हैं कि ये सजावट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी। पांडुलिपि का आकार कितना बड़ा है, चर्मपत्र कितना बढ़िया है, सजावट कितनी शानदार है, ये सब बातें उस किताब के मकसद और अहमियत को बताती थीं।
अच्छा।
एक बड़ी भारी सोने से सजी बाइबल शायद चर्च में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए थी, जबकि एक छोटी साधारण सी किताब शायद किसी छात्र के निजी इस्तेमाल के लिए।
ये तो गजब की बात है। मतलब किताब का बाहरी रूप ही बता देता था कि उसका समाज में क्या रोल है। जैसे आज हम किसी महंगी हार्ड कवर किताब और एक सस्ते पेपरबैक में फर्क करते हैं, शायद वैसा ही कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन शायद और भी ज्यादा। लिंडिसफॉर्न ने गॉस्पेल जैसी मशहूर भव्य पांडुलिपि,
हाँ सुना है,
और किसी विश्वविद्यालय के छात्र की नोट्स वाली साधारण कॉपी, दोनों हाथ से लिखी हैं, पर उनका मकसद और उनको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। ट्रेहन कहती हैं कि पांडुलिपि सिर्फ टेक्स्ट रखने का बर्तन नहीं थी, वो खुद अर्थ बनाने में भागीदार थी। उसका भौतिक रूप उसके सामाजिक कार्य से जुड़ा था।
अगर हर किताब हाथ से बनती थी और इतनी अलग दिखती थी, तो फिर भाषाओं का क्या? क्या साहित्य सिर्फ एक ही भाषा में था?
ये एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म।
अच्छा।
मध्ययुगीन ब्रिटेन, जहाँ का साहित्य ट्रेहन ज्यादातर पढ़ती हैं, वहाँ भाषाओं का मिश्रण था। चर्च और पढ़े लिखे लोगों की भाषा लैटिन थी, ज्ञान और सत्ता की भाषा। फिर 1066 में नॉर्मन हमले के बाद राजदरबार और अमीरों की भाषा एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच हो गई।
और आम लोग, वो क्या बोलते थे?
आम लोग बोलते थे अंग्रेजी, लेकिन वो भी आज की अंग्रेजी जैसी एक मानक भाषा नहीं थी।
अच्छा।
उसकी कई अलग अलग बोलियां थीं, डायलेक्ट्स, जो इलाके के हिसाब से बदलती थीं। तो सोचिए, एक ही समाज में लैटिन, फ्रेंच और कई तरह की अंग्रेजी चल रही थी।
बाप रे, तो साहित्य इन भाषाओं के बीच कैसे सफर करता था?
यही तो मजेदार बात है। कहानियां और विचार लगातार एक भाषा से दूसरी में अनुवादित और रूपांतरित होते रहते थे।
अच्छा, ट्रांसलेट और अडैप्ट।
हाँ, एक ही कहानी शायद लैटिन में शुरू हुई हो, फिर फ्रेंच में आई हो, और फिर अंग्रेजी की किसी बोली में ढल गई हो, और हर बार इस सफर में वो थोड़ी बदल जाती थी।
कमाल है।
कभी कभी तो एक ही पांडुलिपि में आपको कई भाषाएं साथ साथ लिखी मिल सकती हैं। ये बहुभाषावाद उस समाज की मिलीजुली संस्कृति को दिखाता है।
और क्योंकि हर कॉपी हाथ से लिखी जाती थी, तो गलतियां भी होती होंगी, या शायद लिखने वाला जानबूझकर कुछ बदल देता हो।
बिल्कुल, इसी को ट्रेहान शाब्दिक तरलता कहती हैं, टेक्सचुअल फ्लूइडिटी,
शाब्दिक तरलता।
हाँ, कोई भी दो हाथ से लिखी कॉपियां एकदम एक जैसी नहीं होती। लिपिक सिर्फ मशीन की तरह नकल नहीं करते थे, उनसे अनजाने में गलतियां होती थीं, वो शब्दों को छोड़ देते थे या कभी कभी जानबूझकर बदलाव करते थे।
जानबूझकर क्यों?
कई कारण हो सकते हैं, शायद उन्हें कोई गलती सुधारनी हो, या भाषा को अपने जमाने या इलाके के हिसाब से बदलना हो।
अच्छा।
या उन्हें लगे कि कहानी को बेहतर बनाने के लिए कुछ जोड़ना या घटाना जरूरी है। कभी कभी वो दो अलग अलग स्रोतों को मिलाकर एक नया संस्करण ही बना देते थे।
बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी कहानी का कोई एक सही या ओरिजिनल वर्जन ढूंढना तो लगभग नामुमकिन होगा।
हाँ, ज्यादातर मामलों में यही सच है। ट्रेहार्न उदाहरण देती है पियर्स प्लोमन जैसी मशहूर कविता का।
हाँ।
जिसके कई अलग अलग संस्करण मिलते हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। एक निश्चित पत्थर की लकीर जैसा टेक्स्ट का आइडिया तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ही मजबूत हुआ। मध्य युग में टेक्स्ट एक बहती हुई नदी की तरह था, जो लगातार बदलता रहता था। उसकी ये तरलता ही उसकी प्रकृति थी।
ये तो लेखक, मतलब ऑथर, की हमारी समझ पर भी सवाल उठाता है। अगर टेक्स्ट बदलता रहता था और लिखने वाले लिपिक भी उसमें बदलाव कर सकते थे, तो फिर असली लेखक कौन हुआ?
बेहतरीन सवाल, और यही ट्रेहान का एक और अहम बिंदु है, लेखकत्व, ऑथरशिप और गुमनामी।
अच्छा।
आज हम लेखक को बहुत महत्व देते हैं, कॉपीराइट कानून है, हम जानना चाहते हैं कि ये विचार किसका है, लेकिन ट्रेहान बताती हैं कि मध्य युग में लेखक की ये आधुनिक अवधारणा कि एक अकेला जीनियस अपनी कल्पना से कुछ नया रचता है, ज्यादातर मौजूद ही नहीं थी।
तो फिर रचनाएं कैसे बनती थी? क्या कोई नाम नहीं होता था बनाने वाले का?
बहुत सारी मध्ययुगीन रचनाएं गुमनाम हैं, हमें पता ही नहीं क्यों नहीं किसने लिखा।
सच में?
हाँ।
शायद उस समय लिखने वाले का नाम उतना महत्वपूर्ण माना ही नहीं जाता था जितना कि खुद रचना का संदेश या उसका पारंपरिक महत्व। कई बार पांडुलिपि की नकल होते होते लेखक का नाम कहीं खो जाता था। लक्ष्य अक्सर व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाना नहीं बल्कि समुदाय के ज्ञान या आस्था को आगे बढ़ाना होता था।
क्या मौलिकता, ओरिजिनलिटी का कोई महत्व नहीं था?
मौलिकता से ज्यादा महत्व अक्सर संकलन को दिया जाता था।
कॉम्पाइलेशन।
संकलन मतलब इकट्ठा करना।
हाँ।
यानी पहले से मौजूद मान्य स्रोतों जैसे बाइबल, चर्च के विद्वानों की बातें या पुराने यूनानी रोमन लेखकों को कुशलता से इकट्ठा करके एक नई रचना तैयार करना, ये हुनर माना जाता था।
अच्छा।
कभी कभी तो किसी रचना को ज्यादा वजनदार बनाने के लिए उसे जानबूझकर किसी पुराने मशहूर ज्ञानी जैसे अरस्तु या राजा सुलेमान के नाम से जोड़ दिया जाता था।
अरे।
लेकिन कुछ लेखक तो होंगे जिनका नाम हमें पता है, जैसे जेफरी चौसर।
हाँ हाँ बिल्कुल, चौसर या क्रिस्टीन डी पीजान जैसे कुछ लेखक थे जो अपने काम को लेकर सजग थे और अपनी भूमिका पर सोचते भी थे। लेकिन ट्रेहान कहती हैं कि ये उस दौर में अपवाद की तरह थे।
अच्छा।
ज्यादातर रचनाकार गुमनाम थे, जैसे बेवुल्फ या सर गॉविन और ग्रीन नाइट जैसी मशहूर कविताओं के कवि। महत्व अक्सर व्यक्ति का नहीं बल्कि उस परंपरा का था जिससे वो जुड़े थे या उस दैवीय प्रेरणा का था जिसे वो व्यक्त कर रहे थे। लेखक का रोल अक्सर एक माध्यम बनना था न कि स्रोत।
एक और बड़ी बात जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो फिर ये साहित्य उन तक पहुंचता कैसे था? इसका समाज में असल काम क्या था?
ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। ट्रेहान बताती हैं कि मध्ययुगीन साहित्य मुख्य रूप से सुनने और सुनाने के लिए था। प्रदर्शन, परफॉर्मेंस उसका अभिन्न अंग था।
सुनने सुनाने के लिए?
हाँ, कहानियां और कविताएं अक्सर जोर से पढ़कर या गाकर सुनाई जाती थीं। मठों में साधुओं के लिए, राजा के दरबार में अमीरों के मनोरंजन के लिए, या फिर गांव के चौक पर आम जनता के लिए त्योहारों पर।
मतलब पढ़ना एक निजी शांत गतिविधि नहीं थी जैसा आज हम सोचते हैं, बल्कि एक सामाजिक सामूहिक अनुभव था।
बिल्कुल, और इसी वजह से मध्ययुगीन साहित्य में आवाज और ध्वनि का इतना महत्व है। अनुप्रास, तुकबंदी, लय, एलिटरेशन, राइम, रिदम, ये सिर्फ सजावट नहीं थे।
तो फिर
ये सुनने में अच्छे लगते थे, प्रदर्शन को जानदार बनाते थे और सबसे जरूरी याद रखने में मदद करते थे, खासकर तब जब किताबें बहुत कम और महंगी थीं।
तो साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था?
कतई नहीं, मनोरंजन उसका एक हिस्सा जरूर था, लेकिन उसके और भी कई महत्वपूर्ण रोल थे।
जैसे कि?
साहित्य का इस्तेमाल होता था धार्मिक शिक्षा देने के लिए, इतिहास बताने के लिए, चाहे वो कितना ही काल्पनिक क्यों ना हो, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राजा या चर्च की सत्ता को मजबूत करने के लिए। ये समाज को जोड़ने और उसे दिशा देने का एक शक्तिशाली जरिया था।
और क्या धार्मिक और दुनियावी साहित्य में कोई साफ बंटवारा था जैसे आज होता है सेक्युलर और रिलीजियस?
ट्रेहार्न के अनुसार ये बंटवारा उतना साफ नहीं था जितना हम आज सोचते हैं।
अच्छा।
वीरता और रोमांस की कहानियों जैसे राजा आर्थर की कहानियां में भी अक्सर गहरे धार्मिक और नैतिक संदेश छिपे होते थे। और दूसरी तरफ संतों की कहानियों हैग्योग्राफी यानी उनके जीवन और चमत्कारों के विवरण में भी खूब ड्रामा, रोमांच और यहाँ तक कि हास्य भी मिल सकता था। उस युग में जीवन के ये पहलू आपस में गुंथे हुए थे और साहित्य इसी मिलीजुली सच्चाई को दिखाता था।
तो अगर हम प्रोफेसर ट्रेहान के इन सारे विचारों को समेटें तो मध्ययुगीन साहित्य के बारे में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या टेक अवेज हैं?
मेरे ख्याल से कुछ बातें बहुत अहम हैं। पहली, साहित्यिक निरंतरता। मध्ययुगीन साहित्य ने अतीत की परंपराओं को नकारा नहीं बल्कि उन्हें अपनाया और अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया।
एक तरह की बातचीत थी इतिहास से।
बिल्कुल। दूसरी, पांडुलिपि की केंद्रीयता। किताब के भौतिक रूप को समझे बिना हम उसके अर्थ और मकसद को पूरी तरह नहीं समझ सकते, वो सिर्फ कंटेनर नहीं संदेश का हिस्सा है।
तीसरी, शाब्दिक तरलता। मध्ययुगीन ग्रंथों का बदलते रहना हमें सिखाता है कि सही या स्थिर टेक्स्ट का विचार हमेशा से नहीं था।
हाँ, ये बात हमें भारत की अपनी मौखिक और लिखित परंपराओं की याद दिलाती है जहां रामायण या महाभारत के भी कई पाठ मिलते हैं। ये विविधता कमजोरी नहीं ताकत है।
सही कहा। चौथी, प्रदर्शन और सामाजिकता। साहित्य सिर्फ पढ़ा नहीं, सुना और अनुभव किया जाता था। उसका लक्ष्य अक्सर समुदाय को संबोधित करना और उसे प्रभावित करना था।
हाँ, हमारी अपनी लोक कथाओं और कीर्तन की परंपराएं इसे समझने में मदद कर सकती हैं।
पांचवी, लेखकत्व की अलग समझ। गुमनामी, संकलन और परंपरा का महत्व हमें लेखक की आधुनिक परिभाषा पर सवाल उठाने को मजबूर करता है।
रचनात्मकता का मतलब हमेशा कुछ नया गढ़ना नहीं बल्कि ज्ञान को कुशलता से पेश करना भी था।
और छठी, पवित्र और सांसारिक का संगम। धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी उस दौर में उतने अलग नहीं थे। साहित्य अक्सर इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लेकर चलता था क्योंकि लोगों का जीवन ही ऐसा था।
प्रोफेसर ट्रेहान के स्रोतों में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्हें सीधे उद्धरण की तरह तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके मूल भाव को पकड़ें तो।
हाँ, बताइए पहला विचार क्या होगा।
मध्ययुगीन साहित्य को आदिम या पिछड़ा हुआ समझना भूल है। ये साहित्यिक इतिहास का एक बेहद समृद्ध और इन्वेंटिव दौर था।
सम्मान करना सिखाता है उनकी सीमाओं के बावजूद।
बिल्कुल। दूसरा विचार, पांडुलिपि का पन्ना सिर्फ स्याही रखने की जगह नहीं था, वो खुद अर्थ बनाने में सक्रिय था।
ये हमें चीजों की भौतिकता पर ध्यान देने की याद दिलाता है। कैसे कोई चीज दिखती है, महसूस होती है, ये भी मायने रखता है।
हाँ। तीसरा विचार, मध्ययुगीन लेखक अकेलेपन में नहीं बल्कि एक जीवंत अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संवाद का हिस्सा बनकर लिख रहे थे।
ये उस दौर के खुलेपन और विचारों के आदान प्रदान को दिखाता है। ज्ञान सीमाओं के पार बह रहा था।
सही। चौथा विचार, प्रिंटिंग प्रेस से पहले एक फाइनल अपरिवर्तनीय टेक्स्ट का विचार न तो व्यवहारिक था न ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में था।
ये हमें टेक्स्ट की अस्थिरता को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने को कहता है।
और पांचवा विचार, मध्ययुगीन साहित्य को समझने के लिए सिर्फ भाषा जानना काफी नहीं, उस युग की सांस्कृतिक कल्पना में उतरना जरूरी है।
मतलब हमें उनके नजरिए से उनकी दुनिया की समझ के साथ उन ग्रंथों को पढ़ना होगा।
बिल्कुल।
ये सब बातें सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज की हमारी जिंदगी के लिए इनका क्या मतलब है, हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
देखिए, पहला सबक तो मीडिया के इतिहास को समझने का है। कैसे जानकारी एक रूप से दूसरे और अब तीसरे में बदली है। पांडुलिपि से प्रिंट, प्रिंट से डिजिटल।
हाँ।
हर बदलाव अपने साथ नए सवाल लाता है। जानकारी कौन कंट्रोल करता है, उसका भरोसा कितना है, उसका असर क्या होता है।
बिल्कुल।
ये हमें आज के जमाने का ज्यादा जागरूक मीडिया उपभोक्ता बनाता है।
जैसे ट्रहान हमें पांडुलिपि पर सवाल पूछना सिखाती हैं, ये किसने बनवाई, क्यों, किसके लिए।
हाँ।
वैसे ही हमें आज की ऑनलाइन जानकारी पर सवाल पूछना चाहिए, ये कहाँ से आई है, इसका एजेंडा क्या है, इसे इस तरह क्यों दिखाया जा रहा है।
सही बात है। ये हमें किसी भी क्षेत्र में स्थापित महान रचनाओं की सूची, जिसे कैनन कहते हैं, उस पर भी सवाल उठाना सिखाता है। कौन सी किताबें या विचार हम तक पहुंचे और क्यों, क्या कुछ आवाजें दब गईं या भुला दी गईं, ये इतिहास और साहित्य के अध्ययन में बहुत जरूरी सवाल हैं।
और मध्य युग की सहयोग, संकलन और रीमिक्स करने की संस्कृति।
हाँ।
क्या वो आज के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकिपीडिया या इंटरनेट मीम से मिलती जुलती नहीं है?
हाँ बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हमेशा ओरिजिनल होने का दबाव शायद उतना जरूरी नहीं जितना मौजूदा ज्ञान को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना।
और अंत में ये हमें भाषा की विविधता और उसके लगातार बदलते रहने की खूबसूरती दिखाता है। जैसे मध्य युग में कई भाषाएं और बोलियां साथ साथ थी।
हाँ।
वैसे ही आज डिजिटल दुनिया में भाषा के नए नए रूप बन रहे हैं, ये बदलाव स्वाभाविक है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे यादगार बात ये रही कि मध्ययुगीन लिपिक, वो स्क्राइब्स, बेचारे सिर्फ नकलची नहीं थे।
हाँ।
वो टेक्स्ट को आकार देने में कितने अहम थे, भले ही गुमनाम रहे हों। और ये कि साहित्य कितना ज्यादा सामाजिक और प्रदर्शन पर आधारित था। आज हम शायद भूल रहे हैं कि कहानियां सुनने सुनाने का अनुभव कितना शक्तिशाली हो सकता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके संदर्भ, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना जरूरी है। मध्ययुगीन साहित्य को आज के चश्मे से देखना ठीक नहीं।
बिल्कुल।
उसे उसकी अपनी शर्तों पर, उसकी भौतिकता, उसकी भाषाओं, उसकी तरलता और उसके सामाजिक मकसद के साथ देखना होगा।
हाँ।
ये न सिर्फ हमें इतिहास की बेहतर समझ देता है बल्कि हमारी अपनी डिजिटल दुनिया की चुनौतियों, जैसे सूचना का अथाह सागर, फेक न्यूज, बदलती भाषा को भी एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है।
परंतु में एक विचार जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करें, जिस तरह मध्य युग में टेक्स्ट स्थिर नहीं था, लगातार बदलता रहता था, क्या आज हमारी डिजिटल दुनिया में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है, जहां हर जानकारी लगातार अपडेट होती है, कॉपी पेस्ट होती है, रीमिक्स होती है।
हाँ ये तो है।
क्या हम एक तरह से नए मध्य युग में जी रहे हैं, जहां स्थिर सत्य की धारणा फिर से धुंधली पड़ रही है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए कैप्टा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।